दौला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 13 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् तिहुवनशिरसे हरये भवभयगभ्राधुनिकदेपणम् सिद्धे जीवठाण समलिन गुण चूलियम वोचम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें प्रथम खंड जो जीव स्थान नामक है, उसमें अपना चूलिका का प्रकरण चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 135 पर, 135। अब यहाँ बात अपनी महादंडक की चल रही है। पृष्ठ संख्या 133 से अभी तीसरी चूलिका, पहला कौन सा था? प्रकृति समुत्कीर्तन, दूसरा था स्थान समुत्कीर्तन। वहां स्थानों की चर्चा थी, बंध स्थानों की हमने देखी थी। अब यहाँ तृतीय चूलिका जो है उसमें महादंडक बताएंगे। दंडक यानी यहाँ प्रकृतियों की लिस्ट अपनी भाषा में, के प्रथम ऑप्शन सम्यक्त के सन्मुख जीव जो है वो कौन कौन सी प्रकृति बांध रहा है। सन्मुख यानी वो करण लब्धि के लास्ट में कौन सी प्रकृति बांध रहा है उसकी यहाँ चर्चा है, उसको यहाँ प्रथम महादंडक कहा। द्वितीय महादंडक में देव नारकी की बात करेंगे और तृतीय दंडक में सातवें नरक के नारकी कौन सी प्रकृति बांधता है उसकी बात है। उनमें कोई डिफरेंस है उसकी बात चलेगी। तो यहाँ हमने ये बात देखी थी, प्रथम दंडक करने योग्य है, उसमें उन्होंने प्रकृतियां गिनाई थी, ज्ञानावरण दर्शन। इसे हम क्रम से देखेंगे तो 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण। हमेशा प्रकृतियों की नंबर बताएंगे। घाती अघाती करते हैं तो वेदिनी और अंतराय को, मोहिनी और अंतराय को लेते हैं, परंतु क्रम से अगर लेना है तो ज्ञानावरण दर्शनावरण फिर वेदिनी और फिर मोहिनी, बाद में वो आयु नाम गोत्र अंतराय ऐसा कहते हैं। ये पद्धति है, उसका भी कारण है क्योंकि किसमें कितने नंबर ऑफ परमाणु जाते हैं उसके अनुसार ये बात बताई जाती है। जीव के सुख दुख में निमित्त है इसलिए उसको पहले लेते हैं। जीव के गुणों के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, इसलिए उसको पहले लेते हैं, उसका नाम पहले बताते हैं। तो यहाँ नहीं, यही प्रकृति बनेगी। पहले से चौथे में जाए या सातवें में जाओ? हाँ, सातवें में जाने वाले की विशुद्धि ज्यादा है, तो जो अशुभ प्रकृतियां ज्ञानावरण आदि उसका अनुभाग मिनिमम बंधेगा। मिथ्या दृष्टि में भी वहां, यानी पंच इंद्रियों में, वो एक इंद्रिय का यहाँ नहीं लेना। तो यहाँ हमने देखे कौन कौन सी प्रकृति बांधता है। सातवें में जाने वाले की गुण श्रेणी निर्जरा, वो सातवें के कारण होते हैं, सम्यक्त्व के कारण नहीं है। हाँ, उसको कहेंगे वो सातवें में जाने वाले हैं, तो उसके स्थिति कांडक घात वगैरह जो है उसका प्रमाण जुदा है। यानी पहले से चौथे में जाने वाला, पहले से पांचवें में, पहले से सातवें में, तो उनके वो जो कुछ वहाँ विशिष्ट कांडक घात वगैरह होते हैं उसका प्रमाण जुदा है, क्योंकि विशुद्धि ज्यादा है वैसा उसका कार्य भी होगा। यानी ऐसा नहीं कि चौथे में गया फिर पांचवें में गया और फिर सातवें में, ऐसा नहीं होता है। प्रथम ऑप्शन के काल में उसका गुणस्थान पलटना केवल छठा सातवां वाला, सातवें से छठे, छठे से सातवें हो सकता है, या चौथे से सातवें में गया, सातवें से, ऐसा प्रथम ऑप्शन में नहीं होता, वो द्वितीय ऑप्शन में हो जाता है। श्रेणी उतर कर आता है फिर सातवें से छठे, छठे से चौथे पांचवें में भी जाता है, फिर ऊपर भी चढ़ता है, वो संभव वहां पर द्वितीय ऑप्शन में। यहाँ प्रथम ऑप्शन की बात चल रही है। हाँ देखो हमने ये प्रकृतियां गिनाई थी, आपने शायद लिखी भी होगी पुस्तक के नीचे, पूर्व में हमने लिखवाई थी कि पांचों ज्ञानावरणी, यानी उसमें से तो पांचों का पांच बंध होता है। अब ये मिथ्या दृष्टि है नौ दर्शनावरणी। अब मिथ्या दृष्टि को साता असाता का ऑप्शन है, परंतु यहाँ साता वेदनीय बंधे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के योग्य ये अत्यंत विशुद्ध परिणाम है। मिथ्या तो सोलह कषाय तो बंधेगी बंधेगी यहाँ पर अंतिम समय तक, करण लब्धि के अंतिम समय तक। अब यहाँ पुरुष वेद ही बंध रहा है, क्योंकि बाद में देखेंगे हम प्रायोगिक लब्धि के काल में पहले नपुसक वेद का बंध रुक जाता है, श्रीवेद का बंध, ऐसे क्रम से बहुत सारी प्रकृतियों का बंध अंतर्मूर्त के लिए रुक जाता है। अभी कुछ प्रकृतियों का बंध आगे भी नहीं होगा, और कुछ जैसे अरति शोक का रुक गया, परंतु बाद में समय तो होने के बाद कुछ काल में उसको फिर उसका बंध होने लगेगा, वो तो यथायोग्य हम बाद में देखेंगे। यहाँ हास्यरति बन रही है, भेद गुंछा तो बनती है, वो तो ध्रुव बंधी है। उसके बाद आयु कर्म है, कोई भी नहीं बनता। नाम कर्म की कौन कौन सी बन रही है तो हमने देखा, तो नाम कर्म की तो 28 प्रकृतियां बंधेगी, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैकृत शरीर, तेज शरीर, कारमान शरीर, सम चतुरस संस्थान, वैकृत शरीर, अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगति प्राज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ। देखो देवगति के साथ नॉर्मली स्थिर अस्थिर का ऑप्शन है, शुभ शुभ का ऑप्शन है, यश यश का ऑप्शन है, परंतु यहाँ ये विशुद्धि ज्यादा है तो स्थिर ही बांधेगा, शुभ ही बांधेगा। सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस, कीर्ति, निर्माण, उच्च गोत्र और पांचों अंतराय, इन प्रकृतियों को ये बांधता है। कौन? प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख, और उसमें भी संगी पंचेंद्रिय तीर्यंचय मनुष्य, क्योंकि देव जो है वो देवगति को नहीं बांधेगी, वो मनुष्य गति को बांधेगी, उसमें वो डिफरेंस है। तो मनुष्य गति बांधेंगे तो औदारिक शरीर अंगोपांग बांधेंगे, तो उसके साथ वज्रषभ नारा सहनन बांधेंगे, जो हम दूसरे दंडक में उसको देखेंगे। तो ये बात हमने कल देखी थी और उस पर चर्चा भी हुई थी। अभी आप पेज नंबर 135 पर आ गए हैं, ये नया पैराग्राफ जहां से शुरू होता है ना वहां हम देखते हैं। देखो अब यहाँ विशुद्धि के बढ़ने पर प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख, प्रथम सम्यक्त्व प्रथम उपशम के लिए प्रथम सम्यक्त्व कहते हैं, प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख, अभिमुख यानी सन्मुख, यानी वो करण लब्धि वाला जीव है, मिथ्यादृष्टि जीव के, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसको होता है तो मिथ्यादृष्टि को होता है, क्षोपशम किसको होता है, मिथ्यादृष्टि को भी, मिथ्यात्व में से क्षोपशम सहित सम्यक हो सकता है, या चौथे गुणस्थान वाला औपशमिक वाला जो है प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वाला, वो क्या चौथे कोई भी गुणस्थान में जो है वो तो सम्यक प्रकृति का उदय होने पर बाद में वही जीव क्षोपशम समय दृष्टि हो जाता है। यानी क्षोपशम समय दृष्टि होने के लिए मिथ्या दृष्टि में से वो नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर प्रथमोपशम के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, मिथ्या दृष्टि उसका गुणस्थान है, मिथ्यात्व में से वो कर्मों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि शब्द डाला। देखो क्या कहते हैं, यहाँ विशुद्धि के बढ़ने पर प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्या दृष्टि जीव के प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम कहते हैं, प्रकृतियों के बंध विच्छेद यानी अभी कुछ प्रकृतियां बंधने से रुक जाती है उसका क्रम कहेंगे। सभी अर्थात चारों गति संबंधी कोई भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व के, वो सम्यक्त्व के वो बराबर नहीं है, सम्यक्त के हुआ है तो वो बरोबर नहीं आया, क तो और वो रह गया। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीव एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम के भीतर की स्थिति, एक कोड़ाकोड़ी से कम उसको कहते अंतः कोड़ाकोड़ी सागर, यानी स्थिति कितने घटा देता है वो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर कर देता है, अर्थात अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति को बांधता है। अब यहाँ बंध नया बंध कितना है तो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर का, किसी भी प्रकृति का, इसे आयु का तो सवाल ही नहीं है, तो ये सारी जो प्रकृतियां मिथ्या तो ज्ञानावरण है वो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर बनती है। हाँ उसका प्रोपोर्शन जो है ना 20, 30 और 40 का जो प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में बंधेगी, या मिथ्यात्व का भी 70 में है, तो वो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर बनती है। पहले में पहले अभी तो बाद में आई गए ये प्रकरण, प्रायोग्य लब्धि में जब आता है जी, पांच लब्धि के नाम मालूम है? हाँ बोलो। क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो क्षोभम लब्धि में क्या होता है, ज्ञानावरणादि समस्त प्रशस्त कर्मों का अनुभव प्रति समय अनंत गुणा हीन हीन होकर उदय में आने लगता है। अभी सभी कर्मों का हीन हो रहा है, जैसे मुनि का भी हीन अनुभव हो रहा है, तो शुभ भाव हो गए ना, विशुद्धि बढ़ेगी वहां पर, उसके ही विशुद्ध लब्धि कहते हैं। आठवें आयु की बात नहीं लेना है, आयु को छोड़कर बाकी सभी कर्मों में ही होता है। अनुभव किसका घटता है, अशुभ का है, शुभ का नहीं घटेगा। स्थिति किसकी घटती है, शुभ अशुभ दोनों की। तो प्रायोगिक लब्धि में जब आता है, जिसको देशना ऑलरेडी प्राप्त है, और ऐसा जीव जब जिस काल में तत्व विचार में वो उपयोग उसको तद्रूप होकर परिणमता है, उस काल में क्या होता है, उसको कहेंगे प्रायोगिक लब्धि होती है, यानी उसकी विशिष्ट कर्मों का बंध रुक जाता है, उसको प्रायोगिक लब्धि कहेंगे। स्थिति बंध भी घटता 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 होता है। प्रायोगिक लब्धि में आते ही पहले ही अंतर्मुहूर्त में स्थिति कांडक घात होता है, यानी पहले कितने भी अधिक स्थिति बंधी हो, 70 कोड़ा कोड़ी बंद कर अभी उसको एक अंतर्मुहूर्त बीत भी गया हो किसी का, तो क्या होता है कि ऊपर के निषेकों का पूरा घात होता है एक अंतर्मुहूर्त में, सारे निषेकों के परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। मान लेते ना इतनी वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, तो ऊपर के जितने निषेक थे उसके परमाणु एक समय, दो समय, तीन समय अंतर्मुहूर्त में अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेकों में आ मिलते हैं, यानी अभी स्थिति कितनी बनी सत्ता की, अंत कोड़ा कोड़ी, और उससे भी नया बंध छोट कम होता है। इसलिए यहाँ बंधने वाले स्थिति कितनी है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। मिथ्यात्व तो भी यहाँ बंध रहे हैं ना, अभी मिथ्यात्व तो बंध रहा है, अनंतानुबंधी बंध रहा है अभी हमने, हाँ उसकी बात है। प्रायोगिक लब्धि में कम कर दिया, वहीं से उसके अंत कोड़ा कोड़ी होता है, वो भी क्रम से घटता चला जाता है। स्थिति बंध भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त उतना उतना होता है, फिर घटता है, फिर उतना होता है, फिर घटता है। इसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंध का अपसरण यानी घटना। हमने ये भी देखा था कि 700 ऐसे घटते 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 700 से 800 सागर जितना कटौती हो गई, तब जाके विशिष्ट प्रकृतियों का बंध भी रुकता चला जाता है, उसको कहेंगे प्रकृति बंधापसरण। उसके 34 स्थान है ऐसे, वो आएगी कोई बात। यहाँ पर यहाँ बंध कितना हो रहा है, स्थिति बंध तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर, ये अभी हमने पढ़ा। सत्ता उसकी सत्व तो अंत कोड़ा कोड़ी कर ही दिया, और जितना सत्व है उसके भी कम यहाँ बंध होगा, जितना सत्व है उससे बढ़कर बंध नहीं होगा, और वो भी घटते चला जाएगा। सम्यक तो होने के बाद ऐसा ही है, सत्ता में जो पड़ा है उससे भी कम बंध होगा। हाँ उस बंध में ही ना दिखता होती हो सकती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के योग्य संकलेश विशुद्धि परिणाम होते हैं, तो उसमें कभी थोड़ी ज्यादा थोड़ा कम ऐसा बंध होगा, परंतु सत्ता में जो पड़ा है उससे बढ़कर नहीं होगा। इतनी बात ख्याल में, अब यहाँ पढ़ेंगे देखो। सभी अर्थात चारों गति संबंधी कोई भी प्रथमोपशम सम्यक्तों के अभिमुख मिथ्या दृष्टि जीव एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के भीतर की स्थिति अर्थात अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति को बांधता है, इससे बाहर अर्थात अधिक कर्म स्थिति को नहीं बांधता। ये बाकी डिटेल्स नहीं, मैं लब्धि सार आदि ग्रंथों के अभ्यास से बता रही हूँ, और हमने पहले भी पढ़ा है ये सब। इस अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति बंध से सागरोपम शतपृथक्त्व नीचे अपसरण कर नारकायु का बंध उच्छेद होता है। अभी इसका अर्थ है ये समझ, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बंध हो रहा है, और वो अंतर हर अंतर्मुहूर्त में घटता चला जाता है। कितना घटता है, तो एट ए टाइम पल्ले का संख्यात्वा भाग इतना ही घटता है, संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग घटेगा, तो बहुत बार घटेगा तब जाके पल्ले घटेगा, और 10 कोड़ा कोड़ी बार पल्ले घटेगा तो एक सागर घटेगा, और ऐसे 700 से 800 सागर घटेंगे, जिसको पृथक्त्व सौ सागर कहते हैं। हम उसको 700-800 हमने नाम दिया, उसको कहते हैं पृथक्त्व सौ सागर या सागरोपम शतपृथक्त्व। तो इतना जब घटते घटते इतने जब घट गए, यानी उतने अंतर्मुहूर्त उब गए, तो जाके इतना घट गया, तो कहते इतना घटने के लिए जो कुछ अंतर्मुहूर्त बीते उसमें क्या हुआ, स्थिति की कटौती होते होते आया। अब यहाँ पर पहला प्रकृति बंधापसरण होगा, यानी अब तक वो प्रकृति बन सकती थी, अब यहाँ से आगे नहीं बंधेगी। तो इसलिए क्या कहा, नीचे अपसरण कर, ये स्थिति का अपसरण कर, कितना सागरोपम शतपृथक्व प्रमाण स्थिति का अपसरण कर, यानी इतनी घटने पर, यानी नई बंध अभी इतना घटते घटते यहाँ इतने तक आया, तब नारकायु का बंध विच्छेद होता है। देखो हम ये ऐसे स्थान बताएंगे, ये एक नंबर का स्थान पहले पॉइंट पर किसका बंध रुक गया, नारकायु का विशेषार्थ। अंतह कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति बंध से नारकायु की बंध विच्छेद पर्यंत क्रम इस प्रकार होता है। उक्त स्थिति बंध से पल्लोपम के संख्यात्वे भाग से हीन स्थिति को अंतर्मूर्त तक समानता लिए हुए ही बांधता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, एक एक समय में नया नया स्थितिबंध घटता नहीं है। एक बार स्थितिबंध घट गया, कितना घटा एट ए टाइम, पल्ले का संख्यात्व भाग, हम समझने के लिए कहेंगे चौथा भाग, समझाने के लिए, तो ये घट गया तो अंतर्मूर्त तक उतना उतना बंधेगा। अंतर्मूर्त के बाद फिर उसमें पल्ले का संख्यात्व भाग कटौती होगी, फिर उतना का उतना बंधेगा। हर समय कटौती नहीं होती है, एक बार कटौती होगी अंतर्मूर्त उतना ही समान बंध, फिर कटौती, फिर अंतर्मूर्त प्रमाण समान बंध, फिर कटौती, फिर अंतर्मूर्त प्रमाण समान बंध। स्थिति बंध की ये विशेषता है, विशुद्धि भले बढ़ती चली जाए पर अंतर्मूर्त तक स्थिति बंध समान होता है। फिर उससे पल्लोपम के संख्यात्व भाग से ही स्थिति को अंतर्मूर्त तक बांधता है। इस प्रकार पल्लोपम के संख्यात्व भाग रूप हानि के क्रम से एक पल्लोपम हीन अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति को अंतर्मूर्त तक बांधता है। इसी पल्लोपम के संख्यात्व भाग रूप हानि के क्रम से ही स्थिति बंधापसरण करता हुआ, इसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण, यानी हर अंतर्मूर्त में वो स्थिति बंध में कटौती होती चली जाती है। अंत कोड़ाकोड़ी पहले बांधता था, उसमें इतना कम, फिर और उतना कम, फिर और उतना कम, ऐसे करता हुआ दो पल्लोपम से हीन, तीन पल्लोपम से हीन इत्यादि स्थिति को अंतर्मूर्त तक बांधता। यानी एक पल्ले घटाया, दो पल्ले घटाए, पर एट ए टाइम कितना घटाया, पल्ले का संख्यात्व भाग, मान लेते ना हम चौथा भाग कहें, तो चार बार घटाए तो एक पल्ले घटा, आठ बार घटा तो दो पल्ले घटे, इस तरह से। तो एक सागर घटने को कितने बार करना पड़ेगा, कितने अंतर्मूर्त जाएंगे, 40 कोड़ाकोड़ी, 10 कोड़ाकोड़ी बार पल्ले होता है तब एक सागर घटता है, तो 40 कोड़ाकोड़ी बार वो घटेगा तब एक सागर घटेगा, और ऐसे हमको कितने सैकड़ों सागर घटाना है, तो 40 को और 700-800 से गुणा करो, यानी कितने इतने अंतर्मूर्त जाएंगे, वो अंतर्मूर्त तो, और ये सारा मिलकर भी, ये तो हम अभी यहाँ प्रायोगिक लब्धि के गिन रहे हैं, और ऐसे सभी प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि, ये सब मिलकर भी अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। पांचों लब्धि का काल भी अंतर्मूर्त है, यानी कितना सूक्ष्म यह विवेचन है ना, वो अंतर्मूर्त अपने पकड़ में भी नहीं आवे, इतने छोटे छोटे हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, पुनः इसी क्रम से 136 पेज पर आ गए। आगे आगे स्थिति बंध का ह्रास करता हुआ, यानी कटौती होते हुए, एक सागरोपम से हीन, दो सागरोपम से हीन, तीन सागरोपम से हीन इत्यादि क्रम से 700-800 सागरोपम से हीन, मैंने बताया ना 700-800 हम देखते हैं, पृथक्व के लिए 700-800 लिख दिया। अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को जिस समय बांधने लगता है उस समय एक नारकायु प्रकृति बंध से विच्छिन्न होती है। यानी यहाँ पहले में पहले कौन सी प्रकृति बंधना रुक जाती है, मिथ्या दृष्टि तो चारों आयु किसी का भी बंध कर सकता है, यहाँ नारकायु का बंध रुक गया है, अभी भी तीरियंच आयु वगैरह बांध सकता है इस काल में। नारकायु की बंध विच्छित्ति के पश्चात, देखो ये तो है तो बंधापसरण, बंधे विच्छित्ति कहते हैं, नारकायु तो आगे सम्यक तो होने पर बंधेगी नहीं, परंतु ये प्रायोगिक लब्धि मिथ्या दृष्टि अभव्य को भी हो सकती है, अगर वहां से वो वापस लौटता है, नहीं तत्व विचार कुछ करने लगा, इतना हो गया फिर अभव्य है तो उसको सम्यक तो करण लब्धि होगी नहीं, तो उसके फिर विशुद्धि परिणाम हट गए, फिर संकलेश में आ गया, फिर ये बांधने लगेगी, इसका कहते बंध विच्छेद हुई, परंतु वो एक्चुअली ये सारे बंधापसरण के आपका ये प्रश्न है कि प्राग्यलब्धि से कोई छूट गया, भले भव्य भी जीव प्राग्यलब्धि तक ही आया और फिर छूट गया, तो उसका ये कर्म कितना किया था स्थिति उसने अंत कोड़ा कोड़ी सागर, अब उसके संकलेश बढ़ गए तो नया बंध कितना होगा, कुछ भी हो सकता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का, तो उत्कर्षण वो जो नीचे आ गए है उसके फिर परमाणु अपनी शक्ति स्थिति तक ऊपर चढ़ेंगे, उसके बंध के समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ऊपर चढ़ सकते। अब बंध के समय कब बंधा था अपने को मालूम नहीं है, वो उसकी शक्ति स्थिति कहते, जो अंत कोड़ा कोड़ी नीचे के निशिकों में आए थे परमाणु, वो संकलेश के साथ नए बंध के साथ उत्कर्षण होता है, उत्कर्षण होने के लिए नए बंध की आवश्यकता होती है। अब नया बंध अधिक बहुगा उसके साथ वो पुराने नीचे आए हुए परमाणु फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना, वो तो प्रवचन सुनते हैं, सीरी सुनते हैं कहो या अभ्यास करते हैं, तब तक तो विशुद्धि यानी तत्व विचार चल रहे हैं, उस काल में तो स्थिति कम बन रही मान लेते हैं, या कुछ ऐसे नीचे भी अपकर्षण वगैरह होते रहते हैं और फिर उठकर चले जाते हैं बाहर, तो क्या होता है बाहर ऐसा होता है अन्य अन्य प्रकृतियां बंधने अंतर्मूर्त तक रुक गई, उसने उसको अंतर्मूर्त तक रुक गई है ना, उसको संवर कह सकते हैं, क्यों कि अंतर्मूत्र रुकते तो जब हम अशुभ बांध रहे तो शुभ भी बंध नहीं रहे, तो उसको भी संवर कहना पड़ेगा, इसको भी संवर नाम नहीं देते, अब ये मिथ्या दृष्टि है। जब सम्यक तो हो जाएगा और कुछ प्रकृतियां भी बंधना रुक गई है तो हम कहेंगे उतने का संवर हुआ, उतने का आश्रय रुक गया, उतने का बंध रुक गया।
अभव्य भी प्राग्यलब्धि तक जाता है, हाँ, तो उसको भी संवर मानना पड़ेगा।
हाँ, उसको भी संवर मानना पड़ेगा, ख्याल में आएगी ना, क्या कहना चाहते हैं? नहीं कहेंगे, अभी तो प्राग्यलब्धि में है, ये जो बंधापसरण के स्थान बताने ना, ये स्थिति बंध रुकते चला जाता है उसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण। ये शब्द कैसा तैयार होगा अगर ख्याल में लेते हैं तो कुछ गड़बड़ी नहीं है, पहले हम जो पढ़ते थे हमको ये कुछ अर्थभाषित नहीं होता। प्रकृति बंधापसरण विशिष्ट प्रकृतियों का बंध क्रम से रुकते चला जाएंगे, ऐसे 34 स्थान बताएंगे अभी आपको। पहला स्थान बताया है नरकायु का, ये प्राग्यलब्धि में होता है, करण लब्धि में जो एंटर हुआ है ना वो ऐसी विशुद्धि हुई है, सम्यक तो अभी होने वाला है, तो उस जीव के कुछ प्रकृतियों का बंध कायम के लिए रुकेगा, कुछ अभी अभी विशुद्धि में नहीं बन रही, जैसे अरति शोक नहीं बन रही, बाद में सम्यक तो होने के बाद थोड़ी स्टेडी डाउन हो जाएगी विशुद्धि, जो स्टिप अपराइज है वो रुकेगा, तो कहेंगे वहां फिर बंधेगी। तो ये बंधापसरण के स्थान यहाँ पर है, इसमें से अभी मिथ्यात्व अनंतानुबंधि का बंध तो करण लब्धि के अंत समय तक है, समय तो होते ही उसका बंध रुक जाएगा, बंधापसरण में उसको नहीं लिया है, परंतु अन्य कुछ नाम कर्म की प्रकृतियां, अन्य जो कुछ प्रकृतियां हैं निज गोत्र वगैरह, वो यहाँ रुकती चली जाएगी, उसका क्रम यहाँ बताएंगे। अभी हम नंबरिंग करेंगे इसको, 34 नंबर देंगे, कहीं कहीं सिंगल सिंगल प्रकृति है और कहीं कहीं ग्रुप वाली, यानी संयोग रूप, ऐसा संयोग वाला बंधन वहां नहीं होगा ये कहेंगे। ये समझे, हमने अभी नाम कर्म के बंध स्थान देखे थे, वो 23 वाला बंध सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त वगैरह, वो पहले में पहले रुकते चले जाएंगे, उसके पहले भी नरक गति वगैरह, पहले 4 आयु क्रम से कहेंगे हम आपको बताएंगे, वो आप थोड़ा ख्याल में आ जाएगा तो फटाफट आप 34 के 34 अपसरण के स्थान बता सकते हैं। अभी हम नरकायु पहला देखा है, नरकायु तिरंचायु मनुष्यायु देवायु, इस तरह से हम उसके स्थान कहेंगे। देखो हमने तीसरी लाइन पढ़ना अभी 136 पेज पर, उस समय एक नारकायु प्रकृति बंध से विच्छिन्न होती है, नारकायु की बंध विच्छित्ति के पश्चात तिर्यगायु की बंध विच्छित्ति तक पूर्वोक्त क्रम से ही स्थिति बंध का ह्रास होता है, यानी कितने हजार यानी कोड़ा कोड़ी हजारों तो हो जाएगा ना, 40 को और 700 से 800 से गुणा करना है, 40 को 800 से गुणा करेंगे कितना, 32 32,000 हो जाएंगे, 32,000 कोड़ा कोड़ी बार हो जाएगा, तब जाके उसके इतने अंतर्मूर्त हो जाएंगे, 32,000 कोड़ा कोड़ी बार स्थितिबंध रुकते रुकते तब जाके दूसरी तिर्यकायु का बंध विच्छिन्न हो जाएगा। यानी दो स्थिति प्रकृति बंधापसरण स्थान के बीच में 700 से 800 सागर की स्थिति बंद स्थिति का बंध घटते चला जाना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। हाँ, और एक स्थिति बंध अंतर्मूर्त तक चलता है, बाद में उसमें कटौती होती है। जैसे हम पाटी पर देखते हैं ना, जैसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे अगर हम समझेंगे कि कोई स्थिति बंध मान लेते ना, यहाँ तक यहाँ से ये स्थिति बंध हो रहा था, तो हम अभी उसके ऊपर की लेवल बताते हैं, ये सब जब ऐसा समझ इतना 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 स्थिति बंध होगा, फिर अंतर्मूर्त के बाद कटौती हुई, अब इतना 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 होगा, फिर कटौती होगी, फिर इतना 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 होने लगा, फिर कटौती होगी, फिर इतना 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 होगा, तो ऐसे 700 से 800 सागर इतनी कटौती होगी। और एट ए टाइम कटौती कितनी होती है, पल्ले का संख्यात्मक भाग, तब जाके यहाँ प्रकृति बंधापसरण का एक स्थान, फिर ऐसे घटते 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 प्रकृति बंधापसरण का द्वितीय स्थान, ये 700 से 800 सागर कटौती होनी चाहिए। फिर और उतनी कटौती होने पर तीसरा स्थान, फिर चौथा स्थान, ऐसे 34 स्थान है प्रकृति बंध के अपसरण के, 34 स्थान है, और उसमें टोटल बहुत सारी प्रकृतियां बंध से अपसरण होती है, घटना अपसरण इन्हें घटना कटौती होना, स्थिति बंध में कटौती होना उसको कहेंगे स्थिति बंध अपसरण, स्थिति बंधापसरण। प्रकृतियां बंधती है, कितनी बनती थी उसमें से कितने प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा तो उसको कहेंगे प्रकृति बंधापसरण। पहला स्थान है तिर्य नरकायु का, दूसरा है तिर्यंचायु का। हाँ हाँ दे दो ना, देखो नारकायु है ना, उसके ऊपर पेंसिल से एक लिखो, अब तिर्यकायु लिखा है उसमें दो लिखो, या नीचे के भी पैराग्राफ में तिर्यकायु शब्द आया है वहां पर भी हम देख सकते हैं, ऊपर से चौथी लाइन में फिर पढ़ती हूँ। नारकायु की बंध विच्छित्ति के पश्चात तिर्यकायु की बंध विच्छित्ति तक पूर्वोक्त क्रम से ही स्थिति बंध का ह्रास होता है, ह्रास यानी घटना, और जब वह ह्रास सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमित, प्रमित यानी उतनी उतना, वो माप बताया कितना, सागरोपम शत पृथक्त्व यानी 700 से 800 सागर हो जाता है, तब तिर्यकायु की बंध विच्छित्ति होती है। यही क्रम आगे भी जानना चाहिए, यानी जो जो एक एक स्थान बताएंगे, एक एक किसी प्रकृति का बंध रुकता है तो उसके बीच में इतना ही स्थिति बंध घटते चला जाएगा। इस प्रकार के से स्थिति के ह्रास होने को स्थिति बंधापसरण कहते हैं। उसमें एक कंडीशन क्या है कि जो घटने पर उतना का उतना स्थिति बंध अंतर्मूर्तक होता रहेगा, फिर जाके कटौती होगी, फिर अंतर्मूर्त उतना ही स्थिति बंध, फिर कटौती, स्थिति बंध की विशेषता है। उससे सागरोपम शत पृथक्त्व, पृथक्त्व हुए पृथक्त्व को लगाना, प्रमाण स्थिति का अपसरण कर, अभी हर बार वो नहीं बताएंगे, केवल इतना अपसरण कर कहेंगे या डायरेक्ट एक एक स्थान बताते जाएंगे। तिर्यकायु का यहाँ आप दो आंकड़ा डाल सकते हैं, तिर्यकायु का बंध विच्छेद होता है, उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर मनुष्यायु का बंध विच्छेद होता है, ये नंबर तीन, उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर देवायु का बंध विच्छेद होता है, ये चार। तो पहले चार स्थान कौन से हैं तेज, नारकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। देवों के लिए क्या क्रम कहेंगे, अभी हम देव तो दो ही वायु बांध सकते हैं, तिर्यंचायु और मनुष्यायु, तो उनका पहला स्थान वो तिर्यंचायु का बंध विच्छेद, और दूसरे स्थान अभी मनुष्यायु भी, क्योंकि आयु बंधना रुक जाती है, हर में आई बात, वो तो बाद में हम दूसरे दंडक में देखेंगे, अभी तो यानी ये हमें ये ख्याल आना चाहिए, अभी इन जनरल बात है, इन जनरल मनुष्य तिर्यंचो की ये बात है कि ये सभी चारों गति के तो वही बांधते हैं, तो उन्हीं की अपेक्षा ये पहला महादंडक है। आगे बढ़ते हैं, देखो चार तक हमने देखे, उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। जहाँ गति बनती वहाँ उसकी गत्यानुपूर्वी उसके साथ बनती ही रहती है। अब ये दोनों प्रकृति यहाँ से आगे नहीं बंधेगी। यदि सम्यक तो हो जाता है तो कायम के लिए नहीं बंधेगी जब तक सम्यक दृष्टि है। अब यदि वो मिथ्या तो में वापस फिर प्रायोग लब्धि छूट जाती तो फिर बंधेगी, तत्व विचार के काल में नहीं बंध रही थी, वापस बंधने लगेगी। उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर परस्पर संयुक्त, देखो परस्पर संयुक्त का अर्थ होता है ये पूरा लॉट यहाँ बनता था वो नहीं बंधेगा, उसमें से कुछ प्रकृतियां आगे भी बनती रहेगी, परंतु ये संयोग रूप इतना प्रकृतियों का जोड़ रूप जो है वो यहाँ तक बनता है। वो कौन सा है? सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर, यानी सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद संबंधी बंध हो रहा था वो यहाँ तक होता है, इससे आगे नहीं बंधेगा, ये उसका अर्थ होता है। इन तीन प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। देखो अपर्याप्त नाम कर्म इससे आगे भी बन रहा है, परंतु वो द्विंद्रिय अपर्याप्त अन्य जो बादर अपर्याप्त उसके साथ बंधेगा। साधारण नाम कर्म यहाँ तक ही बनता था, आगे भी सूक्ष्म के साथ यहाँ तक बनता था, बादर के साथ और भी बंधेगा आगे। ये कॉम्बिनेशन वाला यहाँ तक बनता है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ तक बंधेगा, ये उसका अर्थ है। परस्पर संयुक्त नहीं है ये कॉम्बिनेशन में यहाँ तक बनते हैं। उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति जाकर सूक्ष्म अपर्याप्त और प्रत्येक शरीर, देखो पहले सूक्ष्म अपर्याप्त के साथ साधारण शरीर लिया था, अब सूक्ष्म अपर्याप्त और प्रत्येक शरीर लिया। अभी भी सूक्ष्म पर्याप्त का बंध नहीं रुका है, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, इन परस्पर संयुक्त तीनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। अब तक कितने हमने साथ देखे हैं? उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर बादर अपर्याप्त और साधारण शरीर, इन परस्पर संयुक्त तीनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। पहले सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, फिर बादर अपर्याप्त साधारण, ये देखा हमने। उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर बादर अपर्याप्त और प्रत्येक शरीर, इन तीन प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। ये नौ नंबर बताएंगे आप? कौन बताना चाहता है? हाँ बोलो। हाँ चारायु हमने कर्म से देखी, फिर हाँ नरगति नरगत्यानुपूर्वी पांचवें स्थान पर, हाँ प्रत्येक साधारण बादर अपर्याप्त प्रत्येक, नौ देखिए। अभी अपर्याप्त की बात कर रहे हैं ना, अभी सबके अपर्याप्त खत्म कर देना, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय असंगी और संगी सब। अब हम ये उसके स्थान देखें, बहुत आसान है इसे याद रखने को। देखो दसवें नंबर पर, उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर द्विंद्रिय जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। देखो ये कितना हर बार वो पूरा रिपीट कर रहे हैं, उसमें कोई कंटाला नहीं, हम कहेंगे हर बार ऐसा ही जानो और फटाफट स्थान बता दो, है ना। उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर तीन्द्रिय जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। ग्यारह हो गए। उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर चतुरिंद्रिय जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर असंगी पंचेंद्रिय जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। देखो जाति में तो पांच ही करते, परंतु इसमें असंगी का एक अलग बताया, असंगी संबंधी पंचेंद्रिय जाति यहीं तक बंधेगी, तो ये तेरह नंबर हो गया। उससे सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर संगी पंचेंद्रिय जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। देखो अपर्याप्त नाम कर्म यहाँ तक ही बन सकता है, परंतु अभी द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्थ पंचेंद्रिय जाति है तो सब बंधेगी ना, एक इंद्रिय जाति भी बंध रही अभी वही, परंतु वो पर्याप्त के साथ बन रही होगी अभी। तो अभी तक हमने पहले चार आयु लिखे, नरगति नरगत्यानुपूर्व, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, बादर अपर्याप्त साधारण, बादर अपर्याप्त प्रत्येक, वो तो एक इंद्रिय के हो गए। फिर द्विंद्रिय अपर्याप्त, इंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, ये तो यहाँ तक याद हो गए ना। हाँ, कितने हुए अभी तक? 14 हो गए। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर सूक्ष्म पर्याप्त और साधारण, अभी ये कॉम्बिनेशन, इन परस्पर संयुक्त तीनों प्रकृतियों का एक साथ बंधे विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर सूक्ष्म पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, इन परस्पर संयुक्त तीनों प्रकृतियों का एक साथ बंधे विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर बादर पर्याप्त और साधारण शरीर, इन तीनों प्रकृतियों का एक साथ बंधे विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर तथा एकेंद्रिय आतप और स्थावर, देखो क्या कहना चाहते हैं। अभी तक तो केवल एकेंद्रिय नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी उनकी, क्योंकि एकेंद्रिय प्रकृति तो बांधती थी, अन्य प्रकृति के साथ बन रही थी। अभी एकेंद्रिय का ये अंतिम स्थान है, इसलिए पहले तो हमने बादर पर्याप्त और साधारण कह दिया। साधारण तो एकेंद्रियों में ही होता है, इसलिए वहां एकेंद्रिय कहने की जरूरत नहीं थी। फिर भी एकेंद्रिय अभी भी जाति बन रही थी, किसके साथ? प्रत्येक शरीर के साथ। तो जब हम बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर कहेंगे तो एकेंद्रिय स्थावर और आतप जो एकेंद्रिय के साथ ही बनती है वो भी यहाँ तक ही बन देगी। आतप प्रकृति एकेंद्रिय के साथ ही बन सकती थी, ये सभी यहाँ 6 का संयोग रूप भंग कहेंगे, ये 18 हो गए। यानी 18 तक यहाँ तक एकेंद्रिय का बंद हो सकता था, यहाँ तक। अभी इसके आगे एकेंद्रिय का नाम नहीं लेंगे, अभी सभी पर्याप्तों को कहेंगे, द्विंद्रिय पर्याप्त, तीन्द्रिय पर्याप्त, इस तरह से। वहां तक हमने असंगी और संगी कहा, यहाँ भी असंगी और संगी कहेंगे क्या? असंगी तक रुकेंगे, संगी संगी का कुछ तो बंद होना चाहिए ना, पंचेंद्रिय जाति का बंध नहीं रुकेगा, पर्याप्त का भी बंद होता रहेगा, पंचेंद्रिय जाति का भी होता रहेगा, समझ में? असंगी तक, पहला तो हमने असंगी अपर्याप्त संगी पर्याप्त सबको लिया था, अब जाके गाड़ी कहाँ रुकेगी? असंगी पर्याप्त तक। देखो अभी हम क्रम से पढ़ेंगे, 18 तक तो एकेंद्रिय देखे ना, 18वें स्थान पर 6 प्रकृतियां बताई, बादर पर्याप्त साधारण एकेंद्रिय स्थावर आतप, ये हो गए। अब आगे बढ़ते नीचे से चौथी लाइन, उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर द्विंद्रिय जाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर तीन्द्रिय जाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर चतुरिंद्रिय जाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर देखो असंगी पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। अब यहाँ संगी पंचेंद्रिय को नहीं लेना, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त नाम कर्म तो बनता ही रहेगा, वो तो समय दर्शन होने पर भी बंधेगा ना, गति जाति कुछ ना कुछ तो बनती ही रहेगी। हाँ, पर्याप्त संबंधी बंध तो सम्यक तो होने पर भी होगा ना, उसका बंध नहीं रुक सकता, कोई ना कोई गति कोई ना कोई जाति तो बंधेगी कि नहीं, समय दृष्टि को भी बंधेगी, यहाँ पर भी बंधेगी, वो हर समय बनती है, परंतु ऑप्शनली इतने सारे जो खोटे पर्याय उसका सब बंध रुक गया। अभी संगी पंचेंद्रिय को बांध रहा है, अब भी उसके गति नहीं बंधना रुकी, मनुष्य गति नहीं बंधना रुकी, तीरंज गति बंधना नहीं रुकी है, नरक गति 5वें स्थान पर बंधना रुकी थी, बाद में ये जाति संबंधी सब बताए उन्होंने, अब भी तीरंज गति बन रही, मनुष्य गति बन रही, देवगति बन रही, ये मनुष्यों के लिए अपेक्षा बात करें। तभी उसमें से जो हीन वाले प्रकृति है वो यहाँ चिरंज गति वगैरह बंधना रुक जाएगी, मनुष्य गति भी अंतिम में रुकेगी, अकेले देवगति रहेगी, बंधेगी, मनुष्यों के लिए देवगति का बंध चलता रहेगा। तभी वो प्रकृतियों के नाम हम क्रम से देखेंगे। अभी तक कितने स्थान देखे? 22 हो गए। 22 समझ आ सकेंगे आप? नहीं कोई बात नहीं, आप बताएंगे, बोलो बोलो। अपर्याप्त साधारण प्रत्येक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, संज्ञा पर, हाँ 14 हुए, अभी 15 हुए, अभी पर्याप्तों के लेना, सूक्ष्म पर्याप्त साधारण प्रत्येक साधारण पर्याप्त प्रत्येक, अभी 18वें स्थान पर एक केंद्रीय आतप सावर, ये तीन और तीन बता देना, हाँ फिर ये पर्याप्त, हाँ ये कितने हो गए, 12 10 बस 22 हो गए। अभी यहाँ वो गति वगैरह की बात करेंगे, अभी जाति की बात अभी हो गई, हाँ अब आगे देख 138, हाँ हाँ तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय हुआ ना, क्या पढ़ा आपने, 22 स्थान किसको दिया, 22वां नंबर असंगी को दिया। अभी कौन सी जाति बन रही है, पंचेंद्रिय जाति बन रही है पर्याप्त। अब 23वां स्थान देखो, अभी देखो उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उत्तर कर तिर्यक गति, तिर्यंज गति यहाँ तक बन रही थी, अभी तिर्यंज गति बनना रुकेगी, तिर्यक गति प्रायज्ञान पूर्वी और उद्योत, क्योंकि उद्योत प्रकृति तिर्यंज गति के साथ ही बनती है, जब तक गति बनेगी तब तक वो बन सकती है, अब नहीं बनेगी इससे आगे। इन तीनों प्रकृतियों का एक साथ बंधे विच्छेद होता है, कौन से तीन लिए, उद्योत 23वें नंबर पे, उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर निज गोत्र का बंधे विच्छेद होता है। देखो तीरेंज गति के साथ तो निज गोत्र बनता है, तो उसको बाद में क्यों अलग से क्यों लिया, क्योंकि मनुष्य गति के साथ भी तो निज गोत्र बन सकता था, इसलिए थोड़ा और विशुद्ध होने पर निज गोत्र का बंध रुक गया। ये 24वें स्थान पर निज गोत्र, 23वें स्थान पर तिर्यंज गति गत्यानुपूरी उद्योत, और 24वें में निज गोत्र। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर, देखो चार अब ले रहे, अप्रशस्त विहार गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इन चारों प्रकृतियों का एक साथ बंधे विच्छेद होता है, ये 25वें नंबर पर, जो हमने दूसरे गुणस्थान में भी ये प्रकृतियां लेते हैं ना, हम ये चार प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान के बंधे विच्छेद में कहते हैं, यहाँ पर भी लेना है। उससे सागरोपम शत पृथक्त प्रमाण स्थिति उतर कर कुंड संस्थान और असंप्राप्त सुपाटिका शरीर सहनन, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंधे विच्छेद होता है। देखो 23वें नंबर पर तिर्यंज गति गत्यानुपूरी उद्योत, 24वें नंबर पर निज गोत्र, 25वें नंबर पर अप्रशस्त विहार गति, दुर्भोग, दुस्वर, अनादेय, 26वें नंबर पर 6 नंबर का संस्थान और सहन, ये याद रखने के लिए अच्छा रहेगा, छठे नंबर का सहनन और छठे नंबर का संस्थान यहाँ पर बंधे विच्छेद होती है 26 पर। उससे सागरोपम शतपृथक्त प्रमाण स्थिति उतर कर नपुसक वेद का बंध विच्छेद होता है, 27 नंबर पर नपुसक वेद है। उससे सागरोपम शतपृथक्त प्रमाण स्थिति उतर कर वामन संस्थान और कीलित शरीर सहनन, 5वें नंबर का संस्थान और सहनन। देखो 23 पर तिर्यंज गति तिर्यंज गत्यानुपूरी उद्योत, 24 पर नीच गोत्र, 25 पर वो चार अप्रशस्त विहार गति, दुर्भोग, दुस्वर, अनादेय, 26 पर वो छठे नंबर का संस्थान सहन है, हुंडक संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका सहन है, 27 पर नपुसक वेद, 28 पर वो पांचवा संस्थान सहन है, वामन और कीलित वो। उससे सागरोपम शतपृथक प्रमाण स्थिति उतर कर कुब्जक संस्थान और अर्धनाराज शरीर सहनन, ये 4 नंबर का संस्थान शरीर सहनन है, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर स्त्रीवेद का बंध विच्छेद होता है, 30 नंबर। ये महाबंध में हमने बहुत बार इसको रेफर किया था, आपको याद होगा था, नपुसक वेद का बंध विच्छेद कौन से स्थान पर हुआ, 27 पर, और स्त्रीवेद का 30 पर। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर स्वाति संस्थान और नाराज शरीर सहनन, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। ये तीन नंबर का शरीर संस्थान है, उससे सागरोपम शतपृथक प्रमाण स्थिति उतर कर 32 नंबर पर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्र नाराज शरीर सहनन, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। ये 32 तक हम आ गए। अब 33 और 34 जो मनुष्य गति औदारिक शरीर वगैरह जो है, उससे सागरोपम शतपृथक प्रमाण स्थिति उतर कर मनुष्य गति औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नाराज शरीर सहनन और मनुष्य गति प्रायगेना पूर्वी, हमने वो मनुष्य गति पंचक ऐसा हम कहते थे उसको महाबंध में उसको, इन पांचों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। अब ये बंध विच्छेद मनुष्य तीरियंचों के होगा और अभी उसके देव गति बनती रहेगी, गति जाति तो बनी नहीं, उसको संगी पंचेंद्रीय जाति भी बन रही है, पर्याप्त नाम कर्म भी बन रहा है, बादर भी बन रहा है, देवगति भी बनती रहेगी उसको। पर मनुष्य गति का बंध मनुष्य और तीरियंचों के लिए रुक गया, समय दृष्टि होने पर भी अभी उसको मनुष्य गति का बंध नहीं होगा, प्राज्ञ लब्धि में रुक गया, करण लब्धि में रुकता चला गया, सम्यक तो होने पर भी रुक ही गया है, ख्याल में है ना। एक कैसा उसका है ने? ये क्या किया उसने, उसके लिए कुछ नहीं किया है, तत्व विचार में ही सब कुछ हो जाता है अपने आप। जीव को गारंटी नहीं ना कुछ करूँ करूँ करूँ, क्या करना चाहते है, उपवास करे तो हम कुछ आगे बढ़े, यानी वो अन्य जो कुछ क्रियारूप भाव है उसके करने से मुझे कुछ प्राप्त होगा, उससे विशुद्धि बढ़ी ऐसा लगता है, परंतु विशुद्ध बढ़ती है तत्व विचार के काल में, इस टाइप की विशुद्धि यानी तत्व ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है उसकी। केवल शुभ भाव रूप उसको भी विशुद्ध कहते हैं मंद कषाय को, पर ऐसे मंद कषाय तत्व विचार से ही हो सकते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अवस्था है, तत्व विचार नहीं है और उपवास किया तो क्या है, शरीर में आत्मबुद्धि है और वो जो राग रूप परिणाम हो रहा है उसमें भी आत्मबुद्धि है, और ये मैं कर रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ ऐसे मान्यता है, उल्टा तो और खोटा खोटा अंदर घुस रहा है मिथ्यात्व में, ख्याल में आते हैं ना, उसमें कर्तृत्व बुद्धि और वो और पुष्ट हो जा रही है उसकी, करने का निषेध नहीं है, अगर तत्व विचार सहित हो तो और ठीक है, अच्छा है, उसमें कुछ बुरा तो है ही नहीं है, पर जो प्राप्त होगा सम्यक तो तत्व विचार से ही होगा, वो बाह्य बातें करने से नहीं होगा, ये नक्की करना है पहले में पहले। ये कितना सारा हो जाता है, जीव को उसमें कुछ नहीं करना है, जीव तो अच्छा है ना, आनंद में रहता है, अपने तत्वों का विचार कर रहा है, क्या है उसको, और ये अपने आप सारी बातें होती है, होती तो अपने ही आप होती, कोई अपने करने से कुछ नहीं होता है, गारंटी हो जाती है ना, चलो हाँ, अभी नक्की हो गया ना कि तत्व विचार से होने वाला है, तो करने के लिए छुट्टी है ना। देखो मनुष्य गति औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रषभ नाराज शरीर सहनन, मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी, इन पांचों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है, उससे सागरोपम शतपृथक प्रमाण स्थिति उतर कर असाता वेदनिया भी, ये जो पांच प्रकृति छह है ना, ये छठे गुणस्थान की बंध विच्छेद है, ये बाद में बंधेगी, हो सम्यक तो होने के बाद, अभी अभी विशुद्धि में नहीं बंध रही है, करण लब्धि में नहीं बंधेगी, उपशम संयुक्त में कुछ काल जाने पर इसको बंध चालू हो जाएगा, उपशम संयुक्त के काल में भी वो बंधेगी, शुरुआत में वो गुण संक्रमण का काल है, विशुद्धि ज्यादा है, बाद में इसका बंध होगा। तो कहते असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशस कीर्ति, इन छह प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है, ये भी अंतर्मूर्त तक रुक गया है, बाद में इसमें से कितनी प्रकृतियां बाद में बंधेगी, कितनी तो कायम के लिए बंध से रुक जाएगी, कितनी अभी बनती हो बाद में नहीं बंधेगी, जैसे मिथ्या तो अनंतानुबंधी यहां तक बंध रहा है, वो बाद में नहीं बंधेगा, ख्याल में आते हैं। हाँ देखो देखो, इनका प्रश्न ऐसा है, सम्यक तो होने के बाद जब तत्व चिंतन करता है तब ये नहीं बंधेगी, ऐसा ही है, तत्व चिंतन नहीं भी करे तो उसके तो अंतर्मूत में संकलेश विशुद्धि होती रहती है, ये तो जो है ना अरति शोक या हस्यरति उसका तो अंतर्मूत में पलटकर बंद होता ही रहता है, तत्व विचार में तो नहीं ही बंधेगी, परंतु तत्व विचार नहीं भी कर रहा है तब भी ये बंधेगी नहीं बंधेगी, बंधेगी नहीं बंधेगी, ये चलता रहता है। यानी ऐसे बुद्धिपूर्वक उसको तत्व विचार में नहीं लगा है, परंतु वो उसके परिणाम में ही ऐसी बातें होती है कि ये अंतर्मुख से अधिक नहीं बनती है, बंद रुक गया तो भी अंतर्मुख तक, छठे गुण स्थान तक बनती, उसका अर्थ क्या है? हाँ, नहीं बंधेगी तत्व विचार के काल में नहीं बंधेगी, परंतु उसके भी वो भी अंतर्मुख से लिमिट नहीं, बीच में ऐसा कोई अन्य विकल्प आ जाएगा तो बंधेगी भी, नहीं तो हम घंटे भर स्वाध्याय कर रहे नहीं बंधी ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, अभी स्पर्श देखो, हमने तो 22 तक तो देखे थे ना, वो जाति संबंधी देखे थे। हा? उसके बाद 23वें स्थान पर तिरिंज गति गत्यानुपूरी और उद्योत, 24वें नीच गोत्र, 25वें वो चार प्रकृतियां, अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय, 26वें स्थान पर संस्थान, 6 नंबर का संस्थान और सहनन, 27वें नपुसक वेद था, निज गोत्र तो 24वें स्थान पर, 27वें नपुसक वेद, 30वें श्रीवेद और वो 32वें नेगुरोत परिमंडल, इससे हमने पहले महाबंध में याद किया था बहुत बार, तो हम अभी 26वें वो ह्युंड संस्थान उसको दिया था, 27वें नपुसक वेद, फिर 28-29वें पांचवा और चौथा संस्थान सहन, फिर 30वें में श्रीवेद, 31वें वो स्वाति और नाराज शरीर से, और फिर उसके बाद 32वें नेग्रोत परिमंडल 2 नंबर का और वज्र नाराज वाला, 33 में वो मनुष्य गति संबंधी 5 और 33 नंबर पर वो छठे गुण स्थान में बंध विच्छित्ति वाली 6। आसान है ना, 34 के 34 याद हो गए हमारे, पहले तो क्या उचल रहा है कुछ नहीं समझता था ना, थोड़ा अपर्याप्त अपर्याप्त पहले लेना सारे, फिर पर्याप्त संबंधी असंगी तक रुकना, फिर बाद में वो तो 3 इंच गति अन्य गति वगैरह जो वो बातें ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं, शंग
हाँ जाने वाला है,
हाँ बंधना रुक जाएगी, ये अंतर्मूर्त का ही है, पूरा मिलकर क्रम से ही होता है, यही क्रम से होता है, क्योंकि ये अंतर्मूर्त तक ही रुकेगी, कायम के लिए रुका है, अभी हम 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं, 40 साल से हम उसकी रुकी, ऐसा नहीं है, वो अंतर्मूर्त से ज्यादा उसकी स्थिति नहीं बनती, क्योंकि बीच में अन्य विचारों में गया, अभी तो स्वाध्याय किया, फिर घर जाते जाते किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो वो तो विशुद्धि कहाँ रही वहां पर, अपनी विशुद्धि जिस काल में है तब ये बातें हो रही है। प्रथम ऑप्शन नहीं है अभी, प्रथम ऑप्शन हो बाद, ये प्रायोगिक लब्धि में है, करण लब्धि में आत्म सन्मुख हो जाता है और उसका आत्मा का अनुभव हो जाता है तो ये रुकी, जब तक वो समय दृष्टि है तब तक रुकी, नहीं आती सबकी नहीं आती, अभव्यों को भी ये होती है, अभव्य किसको कहेंगे जिसको कभी समय दर्शन नहीं होने वाला, तो उसके भी ये प्रथम ऑप्शन सॉरी ये प्रायोगिक लब्धि तक के सभी हो सकते हैं स्थान। नहीं जानेगा भी तो भी हो सकता है ना उसके भी, यानी अभव्य क्यों, क्योंकि अभी उसकी शरीर में जो आत्मबुद्धि है, राग में जो है वो कर्तृत्व बुद्धि, वो सब अभी पड़ा है, फिर भी कुछ वो तत्व का विचार कर रहा है, अभी उसका निर्णय तक नहीं पहुंचा है, निर्णयमय वाली बात है और आत्मसन्मुखता वाली बात है वो तो करण लब्धि, अभी वो सम्यकता लेकर ही छूटेगा, उसके तो होगा ही होगा। यानी जिसको पुण्य का शौक है ना, पुण्य करना चाहते हैं, पुण्य के लिए करते हैं, हमको पाप नहीं करना है, पाप से बचने के लिए पुण्य करना चाहते हैं, तो ये तो उत्कृष्ट पुण्य होगा उसमें, उसका लगता है तत्व विचार से क्या होगा, कुछ करेंगे बाहर खटपटी तो प्राप्त होगा, है ना, कुछ बोलिश होगा, कुछ बोला उन्होंने, हाँ आपने कुछ बोला, हाँ
ये हमेशा मेरा ये प्रश्न है, ये तत्व निर्णय जो होता है ना, वो ये 5 शब्द में वो कौन से शब्द में ये निर्णय होता है?
देखो प्रायोगिक लब्धि तक निर्णय नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अभव्य को भी होता है, अभी निर्णय पूर्वक उसने आत्माभिमुख परिणाम हुए तब जाके करण लब्धि में वो एंटर हुआ। अब उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, यानी निर्णय सहित वो करण लब्धि में एंटर हो जाएगा। अभी हम अपनी भाषा में तो उसको नहीं कहेंगे, तो केवली गम्य बातें हैं, परंतु जो तत्व निर्णय का जो समय है, हम कहते हैं ना जिस समय तत्व निर्णय हो गया तब उसके तो सम्यक तो ही हो गया। अब उसने तो तत्व को जाना है, उस सहित उसने आत्मा के सन्मुख उसके उपयोग कर दिया। उसने वहां पर भी अंतर्मूर्त टिकेगा कि नहीं टिकेगा, यानी उसकी विशुद्धि बढ़ रही है वहां पर, और फिर उसको आत्मा का अनुभव हो गया। हम द्रव्यानुग में से जिस समय उसने आत्मबुद्धि करी उस समय उसको सम्यक तो हो गया। हाँ,
निर्णय पक्का हो गया, मतलब उस
निर्णय हुआ है ना, उसका आत्मानुभव हो ही गया। आत्मानुभव हुआ तभी हम कहेंगे निर्णय हुआ, तब तक नहीं कहेंगे। यानी उसको तो वो बात सही है, ये ख्याल में आया है, परंतु अभी कहीं ना कहीं अटका हुआ है वो। अभी कहीं ना कहीं उसकी आत्मबुद्धि पड़ी है कहो, बाहर की रुचि पड़ी है कहो, कहीं भी, परंतु अभी उसको यानी उस स्टेज तक वो नहीं पहुंचा है। हाँ, यही सही है, यही करने योग्य है, ऐसा ऐसा यहां तक उसका स्वीकार है। अब हम इनकी शंका पूछते यहाँ की। अभी सुनाई दे रहा है क्या आपको, इतनी दूर से सुनाई दे रहा है कि पहले का सुनना अच्छा था? शोभा ठीक है? हाँ, यह प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम किस कारण से है, ये पूछ रहे। क्रम से क्यों बंध विच्छेद होती, अति अप्रशस्त है वो पहले रुकेगी। समाधान, अशुभ, अशुभतर और अशुभतम के भेद से प्रकृतियों का अवस्थान माना गया है। जैसे जो हम देखते हैं मोहनीय के भी, मोहनीय है तो सारे अशुभ ही है ना, तो उसमें भी हम तरतमता का भेद करते हैं। जैसे यहाँ नपुसक वेद बंधना रुक गया, स्त्री वेद बंधना रुक गया, पुरुष वेद वैसे है तो मोहनीय की तो अशुभ ही, परंतु वह भी बनती रहेगी, समय दर्शन होने पर भी बनती रहेगी, तो उसमें तरतमता का जो कुछ है तो अधिक जो अप्रशस्त है उसका बंध रुकते चला जाएगा, ये कहना चाहते। उसी अपेक्षा से यह प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम है। यह प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम विशुद्धि को प्राप्त होने वाले भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीवों के साधारण अर्थात समान है, कॉमन है। ख्याल में आई ना बात? यानी अभव्यों के भी यहां तक तो ये अभव्यों के भी हो सकते हैं, किंतु अधकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये तीन करण भव्य मिथ्यादृष्टि जीव के ही होते हैं। यानी सम्यक तो किसका होगा? भव्य मिथ्यादृष्टि का। प्रथमोपशम सम्यक तो किसको होगा? तो जो भव्य जीव करण लब्धि में एंटर होता है उसके तो सम्यक तो उसके बाद होगा ही, क्योंकि अन्यत्र अर्थात अभव्य जीवों में वे पाए नहीं जाते। कौन से? ये तीन करण अभव्यों में नहीं पाए जाते, कहा भी है ऊपर एक नंबर, खयऊ असमो विसो ही देशन पाओ करण लब्धि चत्तारी विसामन्ना करणम पुनहो सम्मते क्षोभम विशुद्धि। यानी क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, ये पांच लब्धियां होती है। पहले मैं पांच लब्धियों के नाम बताए, उनमें से प्रारंभ की चार तो सामान्य है, सामान्य ने कॉमन है, भव्यों के भी होती है और अभव्यों के भी होती है, अर्थात भव्य और अभव्य जीव इन दोनों के होती है। किंतु पांचवी करण लब्धि सम्यक तो उत्पन्न होने के समय भव्य जीव के ही होती है। भव्य है ना, कभी भी होती है ऐसा नहीं है, उसके भी चार लब्धि पूर्वक ये करण लब्धि होगी, जब वो भी आत्म सन्मुख परिणाम करेगा तब करेगा, ये कहने की पद्धति है। उसके तो तत्व विचार में वो सन्मुखता हो जाती है और उसको सम्यक तो भी हो जाता है। तो सम्यक तो होने के पूर्व ये तीन करण होते हैं। करण लब्धि में तीन करण, अपूर्व अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीनों करणों को मिलकर करण लब्धि कहते हैं। करण यानी वो जीवों के परिणाम है। इन उपर्युक्त प्रकृतियों के बंध से विच्छिन्न होने पर कितनी प्रकृतियां हुई टोटल? चौतीस तो स्थान हुए, 46, 46 गिनाएंगे? अब गिनो, चार आयु, तीन गति, तीन गत्यानुपूर्वी, तीन गत्यानुपूर्वी, तीन गति, तीन गत्यानुपूर्वी। हाँ, बहुत अच्छा। प्रत्येक का नहीं बंद होगा, वो देवगति के साथ प्रत्येक शरीर बंधेगा, ऐसा कहना। एक इंद्रिय सावरा तक, हाँ, ये 15 हो गए। सूक्ष्म साधन अपर्याप्त बता दिया उन्होंने पहले, एक इंद्रिय सावरा तक। हाँ, जाति में ले लेना। हाँ, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जाति, इन्होंने असंगी को भी लिया है, असंगी जाति। हाँ, पांच संस्थान, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। हाँ, तो छठा एक सहनन लेना। हाँ, हाँ, नीच गोत्र, वो चार वाली। नपुसक वेद, स्त्री वेद, छत्तीस, अड़तीस हो गए, गति हो गए, तीनों गतियां लिए, तीनों गतियां, औदारिक शरीर अंगोपांग लेना, वो लिया ना, तीन गति गत्यानुपूर एक साथ लिए। हाँ, उद्योत नहीं लिया था। फिर वो छह तो लेना ही है, अभी लास्ट की छह लेना है। हाँ, वही छह, छत्तीस और आठ, चौवालीस, और कौन से रहिए? दो औदारिक शरीर अंगोपांग। हाँ, हो गए औदारिक शरीर अंगोपांग लिए, 46 हो गए। ये 46 प्रकृतियों का बंधन रुक जाता है। देखो, हमने हर एक सामने कहीं कहीं कॉम्बिनेशन वाले लिया था, जैसे पर्याप्त नाम कर्म का बंधन नहीं रुकता है, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का बंधन नहीं रुक रहा है ना, इस तरह से वो कॉम्बिनेशन में उनका लिया था हमने, असंगी के साथ पर्याप्त वो बादल वो सब लिए थे, परंतु अकेले वो प्रकृतियां बंधनी नहीं रुकती। पंचेंद्रिय जाती है, देवगति, उसके साथ वो बादल प्रत्येक वगैरह सब बंधेगी। तो इस तरह से ये 46 प्रकृतियों के बंध से विच्छिन्न होने पर पूर्व प्ररूपित अवशिष्ट प्रकृतियों को कितने रहेगी, अभी कितने को बांधेगा? 71 को बांधेगा। वो पहले उन्होंने गिनाई थी, ज्ञानावरण की 5 बंधनीय, दर्शनावरण की 9 बंधनीय, वेदनी की 1 बंधनीय, साता वेदनीय, मिथ्यात्व 16 कषाय बंध रहे, भयजुगुप्सा बंध रही है, पुरुष वेद हास्य रति बंध रही है, उच्च गोत्र बन रहा है, देवगति गत्यानुपूर्वी बन रही है, वैकल्पिक शरीर अंगोपांग बन रहे, तेजस कारमान बन रहे, हाँ, वो सब 28 बन रही है। तो ये सब है ना, अंतराय बन रही है, तो ये 71 बन रही है। हमने वो देखा अभी आज आते ही, उसको पहले में पहले देखा था, वो 71 बनती थी। हाँ, 17 है, 71 है। देखो यहाँ हमने पेज नंबर, हाँ वही तो, 134 में जो है ना, दो नंबर का सूत्र जहाँ पूरा हुआ था, तो 71 बांधता है वो, 5 ज्ञानावर, 9 दर्शनावन, वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय वगैरह वगैरह जो है। तो 46 नहीं बांधता है, 71 बांधता है। ये किसके लिए ये होगा? मनुष्य और तिर्यंचन के लिए। देखो, अवशिष्ट प्रकृतियों को सम्यक्तों के अभिमुख तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव तब तक बांधता है जब तक कि वह मिथ्यादृष्टि गुण स्थान के अंतिम समय को प्राप्त होता है, यानी करण लब्धि के अंतिम समय तक ये 71 प्रकृतियों का बंध हो रहा है। टोटल प्रकृतियां बंधने योग्य कितनी है? 120। उसमें से कितने का हिसाब लगाया? 117 का। कौन से तीन नहीं बनती है मिथ्या दृष्टि को? हाँ, तीर्थंकर और आहरक द्वीप। बाकी 117 का हिसाब बता दिया, ख्याल में आई बात? देव तो है, उसमें से 117 का बंध नहीं करते हैं। वो सूक्ष्म का नहीं बंद करेंगे, जो अपर्याप्त का नहीं बंद करेंगे, साधारण का नहीं बंद करेंगे, जो वो नहीं बांधती है, नरक गति देव गति वो बांधते ही नहीं है, वो आयु नहीं बांधते, उसको पहले से वो नहीं बांधते में ले लेंगे, बंधने वाले में फिर उसके बंध विच्छेद कहेंगे उनके लिए। तो यहाँ तिर्यंच मनुष्य की अपेक्षा बताएंगे। इस प्रकार तीसरी चूलिका समाप्त हुई। अब यहाँ कहते, अच्छा इसको चौथी चूलिका ही नाम दिया महादंडक को। अभी दूसरा महादंडक जो है ना, अभी देव कौन सी बांधते हैं उसकी बात करेंगे, देवनार की। चौथी चूलिया लिखा देखो ऊपर, यानी ये चौथी चूलिका यहाँ से प्रारंभ होती है। तथ इमो विदियो महादंडो कादवो भवदी। उन तीन महादंडकों में से यह द्वितीय महादंडक कहने योग्य है। पहला महादंडक कौन सा लिया हमने, कौन सी प्रकृतियां बनती है और कौन सी वो बंध विच्छुति क्रम से होती है, वो क्रम भी बताया उन्होंने, केवल कौन सी नहीं बनती ऐसा नहीं कहा, किस क्रम से बंध रुकता है वो भी बात बताई। अब ये इसका नाम है द्वितीय महादंडक, ये दूसरी लिस्ट बता रहे हैं। शंका, प्रथम महादंडक से अभिन्न इस दंडक के द्वितीयपना कैसे है? क्या कहते हैं उसमें जो प्रकृतियों के नाम है वही यहाँ पर बताएंगे कुछ, तो इसको दूसरा महादंड कैसा नाम क्यों दे रहे हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रकृतियों के भेद से और स्वामित्व के भेद से दोनों दंडकों में भेद पाया जाता है। स्वामित्व ने वो किसके बनती है, तो मनुष्य तिर्यंचों की बात की थी, वो बंध विच्छित्ति किसके है, वो मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा बात की थी, उसको स्वामित्व कहेंगे। और प्रकृतियों के भेद से मनुष्य तिर्यंचों के लिए मनुष्य गति का बंध रुक गया था, देवनारकियों के लिए मनुष्य गति का बंध नहीं रुकेगा, उनके तो दो ही गतियां बनती थी, मनुष्य गति तिर्यंच गति, तिर्यंच गति का बंध रुक जाएगा, मनुष्य गति का बंध तो होता रहेगा। इस तरह से उनके सभी प्रकृतियां बंध योग्य ही नहीं है, जो बंध योग्य नहीं वो उसके स्थान कैसे कहेंगे, जो बंधने वाली में भी उनके स्थानों की चर्चा करेंगे। अब इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, पहले सूत्र पढ़ते ऊपर। अब ये जो दूसरा दंडक है उसमें कौन सी बनती है उसकी बात करेंगे। पंचन्नम नानावर्णीयम, नवन्नम दंशनावर्णीयम, सादावेदनीयम, मिच्छत्तम, सोलसन्नम कसायाणम। पुरी सवेद हस्सरदि भय दुगुंचा आउम च न बंधदि। अभी यहां तक तो समानता है ना। अब आयु भी नहीं बनती उनके, मनुष्य गदी, पंचेंद्रिय जादि, ओरालीय तेज, यानी ये क्या बनती है उसकी चर्चा चल रही है। मनुष्य गदी, पंचेंद्रिय जादि, ओरालीय तेजा, कमय शरीर, समचौरस संठानम, ओरालीय शरीर अंगोवंगम, वज्रिस संगणनम, वर्ण गंध रस फासम, मनुष्य गति पाउगाण पुवी, अगुरु अलहु उवघाद परघाद उत्साह, पसत्थ विहाय गति, तस बादर पज्जत पत्ते शरीर, थिर शुभ सुभग सुसर आदेज जसकित्ति निमिण उच्छागोदम, पंचन्नम अंतरायाणम, एदाव पड़ियो बंधदी, पढ़म सम्मत्ता ही मुखो मुहो अधो सत्तमाए पुड़वीये नेरयम वज्र देवो वा नेरयो वा। क्या कहना चाहते हैं? पहले प्रकृतियां बताई, क्या प्रश्न है शोभा, कुछ प्रश्न है? हाँ ठीक है ठीक है, अभी हमने जो लिस्ट देखी है, पहले महादंडक में भी लिस्ट देखी थी, वो मनुष्य तीर्यंचों के बंधने वाली, प्रथम ऑप्शन सम्यक्तों के अभिमुख तीर्यंच और मनुष्य की बात बताई। ये किसकी बात रहे? प्रथम ऑप्शन सम्यक्तों के अभिमुख देव और नारकी, परंतु नारकियों में सातवीं पृथ्वी के नारकी को छोड़कर, क्योंकि उसके तो तीर्यंच गति बनती रहेगी। तो नाम कर्म में डिफरेंस है, बाकी जो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 16, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और कोई आयु का नहीं बंध होता है, ये बात तो दोनों में समानता है। पहले दंडक में वो देवगति संबंधी प्रकृतियां बताई थी और यहाँ मनुष्य गति संबंधी प्रकृति बंधने वाले की बात है। तो देव कितनी प्रकृतियों को बांध रहा है और मनुष्य कितनी प्रकृतियों को बांध रहा है? मनुष्यों में हमने 71 प्रकृतियों का बंध देखा था, देव कितनी बांधे गए? यहाँ मनुष्य जगति है, वहां देवगति है, यहाँ औदारिक शरीर अंगोपांग है, वहां हाँ सहनन एक्स्ट्रा बांधे गए, उनकी 72 हो जाएगी ना, गिनो जरा कितनी है। देखो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, नौ पांच 14, सातावेदनीय 15, मिथ्यात्व 16 और 16 का शायद 32, 32 और 5 37, फिर मनुष्य गति के साथ कितनी बनती है हमको मालूम है, 29 का बंद होगा ना, वो 37 और ये 29, और फिर उच्च गोत्र और पांच अंतरा है वो 6, 72 हो गई ना, समझ में है ना कैसे गिनना? आयु नहीं लेनी है तो उसको गिनना ही नहीं ना, उसको आयु बनती ही नहीं, उसको गिनना ही नहीं है। हाँ देखो क्या, देखो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, एक वेदनीय, मिथ्यात्व की कितनी बन रही है हमने क्या देखा? देखो मोहनी की 22 बंधेगी हमको, हमने स्थान देखे थे ज्ञानावरण का 5 का स्थान, दर्शनावरण का 9 का स्थान, वेदनीय का 1, मिथ्या यानी मोहनीय के 22, मनुष्य गति बांध रहा है तो नाम कर्म की 29 बंधेगी उसके, क्योंकि यही एक स्थान है ना उसके, अभी तीर्थंकर प्रकृति यहाँ नहीं बांध रहा है तो ये 29 वाला स्थान होगा मनुष्य के साथ। और फिर गोत्र और अंतर है, गोत्र और अंतर है। देखो 9, 5, 14, 1, 15 हुए थे, 15 और 22, 15, 17 और ये 47, फिर 29, 31 और ये 35, वो 47 और ये 35, 72 हो गए ना। मनुष्य गति के साथ सहनन बनता है, देवगति के साथ सहनन बिना बाकी ऑप्शन है, जो उसके योग्य जो शरीर वगैरह वगैरह ले लेना आप, ये डिफरेंस है। देवगति का बंध हमने 28 वाला देखा था, मनुष्य गति का बंध हमने 29 वाला देखा था, इस तरह से एक का डिफरेंस है, वहां 71 बनती है, यहाँ 72 बनती है, देव को 72 बनती है, बांधने वाले देव है, स्वामी देव है, उनको 72 बंध रहे हैं, हाँ देव और नारकी, हाँ क्योंकि औदारिक शरीर के साथ सहनन बन रहा है इसलिए उसका डिफरेंस है। सहनन नहीं होता वहां तो मोहनी की 28 का ही बंध है, मोहनी में ये डिफरेंस है, बाकी तो उस डिफरेंस कहीं पर नहीं है, मोहनी में ये 28 का बंध कर रहे मनुष्य और वो 29 का बंध करे देव, नाम कर्म में मोहनी नहीं, नाम कर्म में, ये केवल हम पढ़ने जाते तो ये ख्याल नहीं आता है, तो अच्छा थोड़ा सा विचार करेंगे तो सहनन बंधा, क्योंकि औदारिक शरीर है तो वज्रषभ नारायण सहनन बांध रहा है यहाँ पर, क्योंकि विशुद्धि ज्यादा है उसके। शंका, प्रथम महादंडक में जिस प्रकार औदारिक शरीर और औदारिक शरीर अंगोपांग इन प्रकृतियों का बंध विच्छेद हुआ है, उस प्रकार उसी विशुद्धि में वर्तमान देव और नारकियों के उन प्रकृतियों का बंध विच्छेद क्यों नहीं होता? यहाँ पर बंध विच्छेद की बात ही नहीं की थी उन्होंने, केवल बंधने वाली प्रकृतियां बताई थी, परंतु ये 34 स्थानों में से इनके कुछ कुछ स्थान ही होंगे जो बनते ही नहीं मूल में, वो कैसे बांधेंगे उसका, वो बंध विच्छेद भी नहीं कहेंगे। इन्होंने डायरेक्ट वही पूछा कि यहाँ तो ये बांधने वाले में लिया और मनुष्यों में वो विच्छेद वाले में बताया है, ख्याल में ना डिफरेंस। ये उसका प्रश्न है, क्योंकि विशुद्धि उनकी भी उतनी हो रही है। जिस विशुद्धि में वो करण लब्धि में एंटर होंगे, उसी विशुद्धि में मनुष्य देव मनुष्य तीन इंच भी होंगे, उतनी विशुद्धि में मनुष्यों को वैकृत शरीर अंगोपांग बन रहे, देवों को अवतारिक शरीर अंगोपांग बन रहे, उसके बंध विच्छेद क्यों नहीं हुई, ये उनका कहना है। समाधान, सहकारी कारण रूप मनुष्य गति और तिर्यंच गति के उदय से वर्जित यानी रहित अकेली विशुद्धि उन प्रकृतियों के बंध विच्छेद करने में समर्थ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, मनुष्य गति का उदय नहीं है तो मनुष्य गति के उदय सहित जो विशुद्धि है उससे औदारिक शरीर अंगोपांग की बंध विच्छेद होती है। प्रश्न ये था, पहला महादंडक किसका था, जो मनुष्य तिर्यंच जो बांधते थे, जो हमने 34 अपसरण देखे थे, उसमें जैसे औदारिक शरीर और अंगोपांग उनके बंध विच्छेद बताया था, नंबर 33 स्थान पर है ना, यानी 33 स्थान पर पहुंचने पर जो विशुद्धि हुई वहां औदारिक शरीर अंगोपांग का बंध विच्छेद हुआ। उस प्रकार उसी विशुद्धि में, क्योंकि जिस स्थान पर वो 33 नंबर वाला आया है उतनी विशुद्धि देवनारकी के भी होगी ना, विशुद्धि की अपेक्षा बात करेंगे तो उनकी भी उतनी विशुद्धि पाई जाती है। तो उस विशुद्धि में वर्तमान यानी उस विशुद्धि में जो आए हैं पहुंचे हैं ऐसे देव और नारकियों के उन प्रकृतियों का बंध विच्छेद क्यों नहीं होता, ये उनका प्रश्न है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य गति और तिर्यंच गति के उदय सहित जो इतनी विशुद्धि है उनको वो मनुष्य गति के साथ बनने वाले औदारिक शरीर अंगोपांग का बंध विच्छेद होता है, पर देव और नारकियों को इतनी विशुद्धि में, क्योंकि उनके तो बनती ही नहीं है, कौन सी अन्य वैकृत शरीर अंगोपांग उनको बनता ही नहीं, उनके एकमात्र औदारिक शरीर अंगोपांग ही बनता है और वो तो सम्यक तो होने पर भी बनता रहेगा। तो उस उदय सहित देवगति और नरक गति के उदय सहित वालों को औदारिक शरीर अंगोपांग तो हमेशा बंधेगा ही बंधेगा, ये इन्हा कहना चाहते यानी उनको वो 33 नंबर का स्थान नहीं होगा, नहीं तो क्या बांधेंगे, वो शरीर नहीं बंधेगा, अंगोपांग भी नहीं बंधेगा, गति भी नहीं बंधेगी, तो उनको मनुष्य गति का ही बंध होगा, औदारिक शरीर अंगोपांग बांधेंगे बांधेंगे। यानी 33 नंबर का जो स्थान यहाँ बंध विच्छेद में मनुष्य तिर्यंचों को गिना है वो उनके लिए नहीं गिनेंगे, ख्याल में आई बात, वो बांधता ही रहेंगे। देखो फिर इसका समाधान पढ़ते, सहकारी कारण रूप यानी निमित्त की बात है, मनुष्य गति और तिर्य गति के उदय से रहित अकेली विशुद्धि उन प्रकृतियों के बंध विच्छेद करने में समर्थ नहीं, यानी देवनारकियों की विशुद्धि वो औदारिक शरीर अंगोपांग का बंध विच्छेद करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि कारण सामग्री से उत्पन्न होने वाले कार्य की विकल कारण से उत्पत्ति का विरोध है। यानी कौन से निमित्त में कौन सा कार्य हो सकता है तो उसके बिना वो कार्य भी नहीं होगा, उसके कारण होता है ऐसा भी नहीं, पर उसके बिना नहीं होगा। अर्थात जो कार्य कारण सामग्री की संपूर्णता से उत्पन्न होता है वह कारण सामग्री की अपूर्णता से उत्पन्न नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि देव और नारकियों में औदारिक शरीर आदि उन प्रकृतियों का ध्रुवबंध संभव है, उनके लिए उनके ध्रुवबंधी कहेंगे हम, इसलिए उनका बंध विच्छेद नहीं होता है। ध्रुवबंध संभव है कहते हैं, क्योंकि वो तो औदारिक शरीर तो हमेशा ही बंधेगा। देव एक इंद्रिय का बंध कर रहे थे पहले तो अंगोपांग बंध रहे, तो अंगोपांग का बंध रुक जाएगा, यानी अंगोपांग का बंध एक इंद्रिय के साथ नहीं हो रहा था, पंचेंद्रिय के साथ तो बंधेगा ही बंधेगा, इसलिए उनका बंध विच्छेद नहीं होता। इसी प्रकार वज्र ऋषभ नाराज सहनन के भी बंध विच्छेद में कारण कहना चाहिए, यानी उसका भी बंध नहीं रुकेगा। देव अन्य सहनन संस्थान बांध सकते हैं, उनका बंध रुकेगा, परंतु ये सहनन तो बनता रहेगा। अवगम चरण बंध दी इस वाक्य में पठित च शब्द समुच्चयार्थक है, अतएव नहीं बनने वाली अन्य भी प्रकृतियों को सूचित करता है। यानी कौन से नहीं बनेगी उसकी, जिसे सूक्ष्म अपर्याप्त वगैरह बनती नहीं वगैरह, तो वो भी उसमें भी ले लेना। वे नहीं बनने वाली प्रकृतियां कौन सी है, यानी नहीं बनने वाली जो देव बांध सकते हैं परंतु यहां नहीं बंधेगी, ऐसी समाधान। असाता वेदनीय स्त्री वेद, वो स्त्री हुआ स्त्री वेद, नपुसक वेद, अरति शोक, आयु चतुष्क। अभी वो चार आयु बांधते नहीं है परंतु उनके बंधने योग्य वाली दो ही आयु है, तो दो आयु का ही बंध विच्छेद कहेंगे। नरक गति, तिर्यक गति, यानी वो बांधते ही नहीं, नहीं इसलिए उसको पहले से ही छोड़ दिया। नरक गति, तिर्यक गति, देव गति, एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, तीनद्रीय जाति, चतुरिंद्रीय जाति। यहाँ ऐसी कुछ प्रकृतियां वो बांध सकते हैं परंतु यहाँ नहीं बंधेंगे। कुछ ऐसी प्रकृतियां जो बांधते ही नहीं है, देवों में बनती ही नहीं है, जैसे मनुष्यों में 117 बंधे योग्य कही थी मिथ्या दृष्टि को, देवों में इतनी सारी नहीं होती, वो कितनी प्रकृतियों का बंध उसमें नहीं होता, वो बांधते ही नहीं। ये सभी इकट्ठा लिया यहाँ पर, ये दोनों को लिया मिलकर, नरक गति देवगति इनको बनती नहीं, ना नरक गति बनती है, ना देवगति बनती है, ना वो अनुपूर्वी बनती है उनके, और ना द्विंद्रिय आदि जाति बनती है। देव तो एकेंद्रीय जाति तो बांधेंगे पर नारकी उसको भी नहीं बांधेंगे, तो देवों के तो 117 का बंध ही नहीं है, न सूक्ष्म है, ना अपर्याप्त है, ना साधारण है। ख्याल में आती है, ना देवगति है, ना नरक गति है, ना दोनों के गत्यानुपूर्वी है, हाँ वो दो आयु भी नहीं बनती है। नहीं पर नाम कर्म की अगर गिनाएंगे तो उसमें भी इतना तो होगा ना, ख्याल में है ना, उनके तो वैकृत शरीर अंगोपांग भी नहीं बंधेगा। देखो हम 142 पेज पर आ गए हैं। एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, तीनद्रीय जाति, चतुरिंद्रीय जाति, वैक्रिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर आहारक शरीर, समचतुर संस्थान को छोड़कर शेष पांच संस्थान जो हम गिनना है, तो आहारक शरीर तो पहले हम तीन तो नहीं गिने थे, 117 में से हम क्या माइनस करना वो देखे। वैक्रिक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नाराज सहनन को छोड़कर शेष पांच सहनन, नरक गति प्राज्ञानुपूर्वी, तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, देव गति प्राज्ञानुपूर्वी, अप्रशस्त विहार गति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशस्कीर्ति, नीच गोत्र और तीर्थंकर, ये नहीं बंधने वाली प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम जिस प्रकार महादंडक में कहा है उसी प्रकार यहाँ पर कहना चाहिए। इस प्रकार चौथी चूली का समाप्त हुई। कल हम वो 34 स्थानों में से उनको कौन कौन सा स्थान कहना, जो बनती उसका स्थान कहेंगे, जो है ही नहीं उसका स्थान में भी नहीं गिनेंगे, तो उनके कौन से स्थान होते उसकी चर्चा कल करेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।